नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने बृहस्पतिवार को भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि खनन, विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बुनियादी और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में व्यापार के काफी अवसर हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, बड़ी संख्या में मानव पूंजी, अनुकूल नीतियों, बाजार और नियामक ढांचे के साथ निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। प्रचंड ने उद्योग मंडल CII के भारत नेपाल व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, नेपाल और भारत के अलावा कोई भी देश इस तरह की घनिष्ठ मित्रता और गहरी सांस्कृतिक समानता को साझा नहीं करता है। ये समानता एक उत्साहजनक पसंदीदा कारोबारी परिवेश प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दोनों सरकारें विकास परिदृश्य को बदलने के लिए साहसिक फैसलों के साथ आगे बढ़ रही है। निजी क्षेत्र को भी इस पर गौर करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो विकास के एक शक्तिशाली इंजन है। प्रचंड ने कहा कि नेपाल में खनन, विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और होटल एवं संबंधित उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल की विदेश निवेश नीति उदार है और उनकी सरकार ने विदेशी निवेश के लिए लगभग हर क्षेत्र को खोल दिया है। प्रचंड ने कहा कि नेपाल अभी औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में है, हर क्षेत्र में निवेश लाभदायक है। उन्होंने कहा कि निवेश में कम सीमा शुल्क, सरल कर व्यवस्था और आय अपने देश भेजने की छूट है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपको निवेश की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2% ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 साल में विकसित राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ये भारत की उभरती वैश्विक छवि और तेज आर्थिक वृद्धि को दिखाता है। निवेश बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत बदल गया है और दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, साथ ही साथ एशियाई और वैश्विक वृद्धि के लिए प्रमुख केंद्र बन रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2030 में जब भारत का माल एवं सेवा निर्यात 2,00,000 करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा, तब लोगों और व्यवसायों के लिए भारी अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में देश का निर्यात 500 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 767 अरब डॉलर हो गया है। भारत 3.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 2047 तक कम से कम 35 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सोचिए कि उस समय ये देश के लोगों के लिए कितने अवसर खोलेगा। गोयल ने कहा कि 2030 तक हम भारत से 2,00,000 करोड़ रुपए का निर्यात देखेंगे, तब सोचिए कि देश कितने अवसर पैदा करेगा। मोबाइल के जरिए संदेश भेजने की सुविधा देने वाले मंच व्हाट्सएप ने अप्रैल में मिली शिकायतों में से लगभग 5% का निस्तारण किया है। कंपनी की भारत में मासिक रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने अप्रैल में 74,52,500 भारतीय खातों को ब्लॉक किया, जिनमें से 24,69,700 खातों को उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट आने से पहले ही ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी को अप्रैल में उपयोगकर्ताओं की तरफ से 4,377 शिकायतें मिली थी। हालांकि उसने सिर्फ 234 शिकायतों यानी लगभग 5% पर कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के पास 4,100 अपीलें खातों को प्रतिबंधित करने की मिली, जिनमें से उसने 223 खातों पर कार्रवाई की। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम श्रेणी 2 और 3 के अंतर्गत 5,159 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करेगा। इन पदों के लिए विज्ञापन पिछले साल आए थे। खाद्य मंत्रालय ने एक सरकारी बयान में कहा कि FCI हाल ही के वर्षों में नियुक्ति के मामले में अग्रणी रहा है। निगम हर साल बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करता है। बयान में कहा गया है, विभिन्न श्रेणियों के तहत पदों को नियमित रूप से विज्ञापित किया जा रहा है। FCI ने वर्ष 2020 के दौरान श्रेणी 3 के अंतर्गत 3,687 अधिकारियों, वर्ष 2021 के दौरान श्रेणी 2 के 307 और श्रेणी 1 के 87 अधिकारियों की नियुक्ति की है। FCI ने वर्ष 2022 में श्रेणी 2 और 3 के 5,159 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। बयान में कहा गया है, 11.70 लाख उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। 2 चरणों में ऑनलाइन परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही समाप्त होने की संभावना है। एफसीआई ने वर्ष 2022 में श्रेणी 2 और 3 के 5,159 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। बयान में कहा गया है 11.70 लाख उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। 2 चरणों में ऑनलाइन परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही समाप्त होने की संभावना है। एफसीआई खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। नागर विमानन मंत्रालय गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने से प्रभावित होने वाले मार्गों का विश्लेषण कर रहा है। कुछ हवाई मार्गों पर किराया बढ़ने के बीच ये कदम उठाया जा रहा है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि गो फर्स्ट मामले के कारण स्थिति बिगड़ी है और गो फर्स्ट की उड़ान वाले मार्गों पर भारी मांग है। दिवाला समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से बंद हैं। सिंधिया ने यहाँ इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा, हमने अन्य एयरलाइन को अतिरिक्त मार्ग दिए हैं, लेकिन ये स्थिति अलग है। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य क्षेत्र ने पिछले 3 वर्षों में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जितने विमानन क्षेत्र में हुए हैं। उन्होंने कहा, हमने एक समूह बनाया है और हम प्रभावित हुए इन मार्गों का विश्लेषण कर रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।